कारक सिद्धांत कौमुदी के अनुसार क्रियान्वित्यम कारकत्वम, क्रिया से इसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अर्थात कारक उस वस्तु को कहा जाता है जिसका अन्वय साक्षात या असाक्षात रूप में वाक्य की क्रिया से हो, अर्थात क्रिया के संपादन में जिसका उपयोग हो। उदाहरणतया वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को वाण से मारा था। इस वाक्य में क्रिया को संपादित करने वाला राम करता है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म है। मारना क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ता था वह कर्म है। क्रिया के साधन में तदिक सहायक करण कहलाता है, यह वाण करण है। सीता के लिए रावण मारा गया अथवा सीता संप्रदान वन अबादान लंका से क्रिया पूर्ण हुई थी अतः लंका अधिकरण कारक है। इस वाक्य में वन राम सीता लंका रावण इन सभी शब्दों का मारना क्रिया के संपादन में साक्षात या असाक्षात रूप से उपयोग है, अतः ये सभी कारक कहे जाएंगे। इस कारण क्रिया के संपादन में ये छह संबंध होते हैं। इन्हीं संबंधों को प्रकट करने के लिए कारकों का प्रयोग होता है और इन्हीं अर्थों में प्रथमा आदि विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं। कारकों को हम निम्न चिन्ह द्वारा पहचान सकते हैं। कारक चिन्ह विभक्ति कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से अलग होना पंचमी, संबंध काकी के रारेरे षष्ठी, अधिकरण मे पे पर सप्तमी, संबोधन भो हे हरे प्रथमा। लेकिन संबंध कारकों को मुख्य कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया क्योंकि षष्ठी विभक्ति के संबंध कारक का क्रिया से कोई तारतम्य नहीं होता, अतः इसे उपपद विभक्ति कहा जाता है। इसी प्रकार संबोधन भी कारक नहीं होता क्योंकि उसका भी संबंध किसी क्रिया के साथ नहीं रहता। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ लिंगम परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रस्तुत सूत्र में मात्र शब्द का प्रयोग मात्र शब्द का प्रत्येक पद के साथ संबंध है, अतः केवल प्रतिपादिक अवस्था में किसी शब्द का नियत अर्थ बताने के लिए अथवा केवल लिंग मात्र का बोध कराने के लिए अथवा परिमाण मात्र बताने के लिए अथवा वचन मात्र बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। वस्तुतः प्रातिपादिक का अर्थ है सार्थक शब्द। प्रत्येक सार्थक शब्द स्वभावतः अपना बहुत कुछ निश्चित अर्थ अवश्य रखता है जो कि प्रातिपदिक का अर्थ कहलाता है, परंतु इस नियत अर्थ को भी प्रकट करने के लिए उस सार्थक शब्द के आगे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि संस्कृत व्याकरणों की मान्यता के अनुसार कोई भी सार्थक शब्द तब तक प्रयोगार्ह नहीं बन सकता जब तक कि उसके आगे कोई न कोई विभक्ति प्रत्यय न लगा दिया जाए। अर्थात कोई भी सार्थक शब्द तब तक अपना अर्थबोध नहीं करा सकता जब तक कि उसके आगे सुप या तिंग प्रत्यय जोड़कर उसे पद न बना लिया जाए। उदाहरण तट तटी तट्टम उच्चय निश्चय एक दो आदि। दूसरा संबोधने च, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है जैसे हे राम हमारा, यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय सु आता है। संबोधन में सु का लोप होने पर हे राम का प्रयोग होता है। संबोधन का अर्थ है अच्छी तरह समझना। जब वक्ता अपनी बात सुनाने के लिए श्रोता को बुलाकर अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है उसी समय श्रोता वक्ता की ओर सावधान होकर सुनता है। इस प्रकार प्रथमा विभक्ति के ये दो ही सूत्र पाणिनि व्याकरण में उपलब्ध होते हैं। द्वितीया विभक्ति पहला कार के, इस सूत्र द्वारा कार्य का अधिकार कर कर्म आदि की संज्ञा दी गई है। दूसरा कर्तुरी उपसतम कर्म, वाक्य में प्रस्तुत क्रिया द्वारा कर्ता जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संख्या संज्ञा होती है। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों में से कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ की सबसे अधिक इच्छा करता है उसे ही कर्म कहते हैं। उदाहरण रामा पुस्तकम पठति में कर्ता की इप्सितम पुस्तक है अतः पुस्तक की कर्म संज्ञा होगी। तीसरा अनभिहिते, इस सूत्र के अनुसार जहाँ पर कर्म अनभिहित हो अर्थात वहां पर भी प्रकृति सूत्र से कर्म कारक का विधान होता है। चौथा अनुक्ते कर्माणि द्वितीया, इस सूत्र से अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण हरिम भजति। पांचवा तथायुक्तम चानिसिप्तम, उन पदार्थों की भी जो कर्ता द्वारा अनिसिप्त न चाहे हुए भी होकर कर्ता के इष्टतम पदार्थ की तरह ही क्रिया से जुड़े रहते हैं कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण ग्रामम गृच्छन तृणम स्पृशति। छठा अकथितम च, अपादान आदि के द्वारा अविवच्छित जो कहने के लिष्ट न हो कारक अकथित कहलाता है। अर्थात जहाँ किसी पदार्थ से अपादान आदि कारकों का अर्थ प्रकट होता भी हो पर वक्ता उसका प्रयोग नहीं करना चाहता हो तो वह कारक अविवच्छित कहलाता है और इस अविवच्छित कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। पर यह नियम निम्नलिखित कारिका में परिगणित धातुओं के लिए ही है। दुहिया चुप चुद चुदंडरुय दिप्रचित चिब्रु शासु जिमथम मुशाम कर्मयुक इत्याद कथितम तथा इस्यानि हृकृष्णव हाम। उपरोक्त 16 धातुओं की अपादानादि के विशेष विवक्षा न होने पर कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण गा दोग्धि पयः। 7 अकर्मक धातुर्भियोगे देश कालो भावे गंतव्य अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। अर्थात अकर्मक धातुओं के योग से द्वेष काल भाव अथवा गंतव्य पद की भी कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण कुरुन स्वपिति मासमास्ते गुदोहमास्ते क्रूष्मास्ते। 8 गतिबुद्धि प्रत्यवर्सनार्थम शब्द कर्माकर्मा काण मणिकर्ता स अड़ौ। अर्थात गत्यर्थक कम या इण आदि बुद्ध्यर्थक ज्ञा विद बुद्ध आदि प्रत्यवर्सनार्थक भक्षणार्थक भज भुज आदि शब्द कर्मक और अकर्मक धातुएं स्था आस शिंग आदि धातुओं का अणयांतावस्था में जो करता हुआ अणयांतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाता है, फिर उसे द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण साधारण या अणयंत्रावस्था, प्रेरणार्थक या अणयंत्यावस्था। शत्रव स्वर्गमच्छन हरे शत्रुन स्वर्गम अगमयत देवामृतमाश्न हरि देवान अमृत माशियत। यहाँ उक्त वाक्य में गरे छपे पद सभी साधारण अवस्था में कर्ता थे पर अणयंत्यावस्था में वे सभी कर्म हो गए, अतः इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। निवह्योर्न वार्तिक के अनुसार नी तथा वह ली जाना क्रियाओं के अप्रेरणार्थक के कर्ता को प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म नहीं होता अपितु करण कारक होता है। उदाहरण नायति वाहयति वा भार भत्तीन। 10 नियंत्री कर्तृकस्य वहीर निषेध। अर्थात उक्त वार्तिक द्वारा कर्म संज्ञा का निषेध वहाँ नहीं होगा जहाँ वह धातु का कर्ता नियंता होगा, अर्थात उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण वाहयति रथ वाहन सुतः। यहाँ वाहन की कर्म संज्ञा का निषेध न होगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। 11 आधिकाधोर्ण अर्थात अद और खाद धातुओं के प्रयोजकर्ता की कर्म संज्ञा न होगी। उदाहरण आदियति खादियति वान्न वटुना। यहाँ प्रयोजकर्ता वटु की कर्म संज्ञा नहीं हुई। 12 भक्षेर हिंसार्थस्य न। वार्तिक के अनुसार भक्ष धातु का जब हिंसा के रूप में अर्थ नहीं होता है तो कर्ता को प्रेरणार्थक में कर्म संज्ञा नहीं होती। 13 जलपति प्रभृति नामुप संख्यानाम। अर्थात जल्प आदि धातुओं के अणयंतावस्था के कर्ता अणयंतावस्था में कर्म संज्ञक होते हैं। उदाहरण पुत्रम धर्मम जल्पयति भाष्यति वा। जहाँ अणयंतावस्था में कर्ता पुत्र की अणयंतावस्था में कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। दृशेश्च दृघ धातु का अणयंतावस्था का कर्ता अणयंतावस्था के कर्ता में कर्म संज्ञक होता है। उदाहरणार्थ दर्शयति हरि भक्तान। यहाँ अड़यंतावस्था के कर्ता भक्त की अड़यंतावस्था में कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। शब्दायतीर्ण वार्तिक सूत्र ने शब्दयाति क्रिया के कर्ता को प्रेरणार्थक अवस्था में संज्ञा कर्म संज्ञा नहीं होगी। उदाहरण शब्दादयति देवदत्तेन हरि क्रूरण्य तरस्याम। हरि ले जाना क्री करना धातुओं के अड़यंतावस्था के कर्ता के अड़यंतावस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण हार्यति कार्यति वा मृत्यम वृत्तेन वा कुटुम कटम। इस वाक में विकल्प से कर्म संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा भाव में द्वितीय भी होगी, अतः मृत्यम वृत्तेन वृत्ति दोनों रूप बनेंगे। 17 अभिवाद दृशुरात्मने पदे वीति वाच्यम। अर्थात अभिपूर्वक वादी धातु और दृश धातु जब प्रेरणार्थक होने पर आत्मने पद में प्रयुक्त होती हैं तब उनका अभिसाधारण अवस्था का कर्ता अड़यंतावस्था में कर्म संज्ञक हो जाता है विकल्प से। उदाहरण अभिवादयते दर्शयते वा देवम भक्तम भक्तेन वा। अतः उसमें अणयंतावस्था के कर्ता भक्त के अणयंतावस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा होती है, अतः उसमें द्वितीय एवं तृतीय दोनों विभक्तियों का प्रयोग होगा। 18 अधिशिंग स्थानासाम कर्म। आदि उपसर्ग पूर्वक शिंग अस्था आस इन धातुओं का आधार कर्म संज्ञक होता है। उदाहरण अधिशेते अध्याष्टे अधिष्ठिति वा वैकुंठम हरे है। यहाँ वैकुंठ शब्द की कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति हुई है। 19वां अभिनिविशश्च एक ही साथ अभिनि उपसर्ग पूर्वक विश धातु का आधार कर्म संज्ञक होता है। अभिनिविशते सन्मार्गम सन्मार्ग का अनुसरण करता है। इस वाक्य में मार्ग शब्द की कर्म संज्ञा होती है। विश धातु के आधार की कर्म संज्ञा अभिनि इस संघात पूर्वक होने पर ही होगी। इनमें से किसी एक के पूर्व रहने पर सप्तमी ही होगी। उदाहरण निविशते सन्मार्गे। 20 उपान्य ध्यांग वसह उप अनु अधि आ पूर्वक वस धातु के योग में आधार एक कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण उपवसति अनुवसति अधिवसति अवसति वा वैकुंठम हरि। यदि इन सर्वों में से कोई वस धातु के पहले न लगा हो तो आधार में सप्तमी होगी। 21वां भुक्त्यर्थस्य न जब उपवास का अर्थ रहना न होकर उपवास करना व्रत करना होता है तब भी सप्तमी होती है। यह वार्तिक सूत्र है। उपपद द्वितीया विभक्ति। उपपद विभक्ति किसी पद के योग में होती है, अतः यहाँ कुछ उपपद विभक्ति के नियम दिए जा रहे हैं। पहला उप सर्वतोष कार्यादि गुण पर्यादिषु त्रिषु द्वितीया अम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। अर्थात तसिल प्रत्ययांत उव एवं सर्व शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति करनी चाहिए। दिक् शब्द के योग में तथा ऊपरी आदि तीन शब्दों ऊपरी ऊपरी अध्यादि अध्यो अध में द्वितीया होती है, अतः इनमें अतिरिक्त स्थलों में भी द्वितीया विभक्ति देखी जाती है। उदाहरण उभयतः कृष्णम गोपाह। दूसरा अभित परित समया निगशा प्रतियोगे अपि। अर्थात अभित परित समया निगशा हा और प्रति के योग में भी द्वितीया होती है। उदाहरण अभित कृष्णम निगशालंकाम। तीसरा अंतरारंतरेण युक्ते। अर्थात अंतरा बीच में अंतरण बिना के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण अंतरा त्वाम माम हरि अंतरेण हरिम न सुखम। चौथा कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। कर्म प्रवचनीय उपसर्गों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण परजन्य जपम अनु प्रावर्षत। अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा से जप के साथ अनु का योग होने के कारण द्वितीया विभक्ति हुई। पांचवा तृतीयार्थे तृतीया के अर्थ को प्रकट करने वाला अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। उदाहरण नदी मन वासिता सेना। इस प्रयोग में नदी शब्द के आगे तृतीया होनी चाहिए। यहाँ अनु तृतीयार्थक में प्रयुक्त हुआ है जिसकी कि सूत्र में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है, अतः नदीम में द्वितीया होगी तृतीया नहीं। छठा हीने हीनता को द्योतित करने में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। उदाहरण अनु हरिम सुरा। यहाँ हीनता द्योतक अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से हरिम में द्वितीया विभक्ति है। उपो अधिकेच अधिक या हीनता अर्थ द्योतित होने पर उप अव्यय की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। उदाहरण उप हरिम सुरा। यहाँ हीनतार्थ द्योतक उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से हरिम में द्वितीया विभक्ति है। आठवां लक्षणित मभूत भूताख्यान भाग विप्सव प्रतिपर्य नमः। अर्थात लक्षण इत्यम भूताख्यान भाग और विप्सा अर्थों में प्रति परि तथा अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। उदाहरण वृक्षम वृक्षम परि प्रति अनुवा विद्यते विद्युत। यह ज्ञापक लक्षण है। इस लक्षण को प्रकट करने वाले प्रति पारी अनु की उक्त नियमानुसार कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से वृक्ष में द्वितीय विभक्ति हुई है। नवा अभिर्भागे केवल भाग अर्थ को छोड़कर शेष प्रयुक्त तीन अर्थों में वर्तमान अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। उदाहरण देवम देवम अभिसिंचति हरिमहिर्वर्तते भक्तो हरिमभि। यहाँ क्रमशः विप्सा लक्षण तथा इत्थम भूताख्यान अर्थ द्योतक अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से हरि में द्वितीया हुई है। दसवां अधिपरि अनर्थको। अर्थात अधि तथा परि आदि किसी विशेष अर्थ के द्योतक न हो तो कर्म प्रवचनीय होते हैं। उदाहरण कुतो अध्यागच्छति। ग्यारहवां सुपूज्याम अर्थात पूज्यार्थ में वर्तमान सु की उक्त संज्ञा होती है। उदाहरण सुसिक्तम। बारहवां अतिरतिक्रमणे च, अर्थात अतिक्रमण तथा पूजा के अर्थ में अति की उक्त अर्थात कर्म रोचनीय संज्ञा होती है। उदाहरण अति देवान कृष्ण, यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञक आदि के द्योतक में द्वितीय अभिव्यक्ति हुई है। तेरह अपेय पदार्थ संभावना अन्वसर्गा गर्गा समुच्चयेषु, अर्थात पदार्थ संभावना अन्वसर्ग ग्रह निंदा तथा समुच्चय के अर्थ में अपि का प्रयोग होने पर अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। उदाहरण पदार्थ सर्पी शोष अति स्यात् संभावना अपि सुस्यात् विष्णु अन्वसर्ग अपि स्तुति ग्रह धिक् देवदत्तम समुच्चय अपि सिंच। उपर्युक्त उदाहरणों में अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति प्रयोग की गई है। चौदह काल धन ध्वानुरंत्यंत संयोगे, अर्थात अत्यंत संयोग होने पर काल और गंतव्य मार्ग को बतलाने वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। उदाहरण मांस कल्याणी कृशम गृह में क्रमशः समय तथा मार्ग या दूरी बताने वाले शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तृतीय विभक्ति पाला स्वतंत्र कर्ता, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वही कर्ता होता है। दूसरा साधकतम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं, अर्थात जिस पदार्थ के व्यापार के अनंतर क्रिया की सिद्धि होती है वही सबसे अधिक सहायक होता है और उसी की करण संज्ञा होती है। तीसरा कर्तिकरण योस्त्रित्रिया, यह तृतीय विभक्ति विधायक प्रमुख सूत्र है। इसके अनुसार जब कर्ता अनिभित या अप्रधान हो तो कर्ता तथा करण में तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण रामेण वाणेन हतो वाली। चौथा प्रकृतिद्यापी दिव्य, प्रस्तुत वार्तिक सूत्र से प्रकृति इत्यादि शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण प्रकृत्याचारु, यहाँ प्रकृति शब्द में तृतीय विभक्ति है। पांचवा दिवह कर्म च, दिव खेलना धातु के साधकतम कारक की कर्म संज्ञा होती है और चकार ग्रहण से तृतीय भी होती है। उदाहरण अक्षय अक्षान व दिव्यति। छठा अपवर्गे द्वितीया, अपवर्ग का अर्थ फल प्राप्ति, फल प्राप्ति या कार्य सिद्धि का बोध कराने के लिए कालवाची है और मार्गवाची शब्दों से तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण अहन क्रोशेन व अनुवाके अधीत। सातवां सयुक्ते अप्रधाने, अर्थात सह के अर्थ के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण रामेण स्व सीतावनम अगच्छत। आठवां ये नांग विकार, जिस अंग के विकार से व्यक्ति विकारयुक्त दिखाई पड़ता है उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण पादेन खंज। नवा इत्थम भूत लक्षणे, अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति के किसी अवस्था विशेष को प्राप्त करने की जो सूचना देता है उसे तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण जटाभितापस। दसवा संज्ञो अन्यातरस्याम कर्मणि, अर्थात सम उपसर्ग केवल क्या धातु के कर्म विकल्प से तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण पित्रा पित्रम वा संजानिते। ग्यारहवां हेतव, हेतु वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण दंडेन घट, यहाँ यद्यपि दंड द्रव्य में व्यापार है पर वह घट का हेतु है, क्रिया का जनक नहीं, अतः यहाँ हेतु में तृतीय है। बारहवां गम्यमाना अभिक्रिया कारक विभक्त प्रयोजिका, अर्थात जब क्रिया वाक्य में स्पष्टतः उक्त न हो फिर भी यदि अर्थ मात्र से ही प्रतीति हो रही हो तो वह क्रिया भी कारक विभक्ति का हेतु होती है। उदाहरण शतेन शतेन वत्सान पाययति पद्य पय। तेरह अशिष्ट व्यवहारे दाढ़ प्रयोगे चतुर्थे तृतीया, अशिष्ट व्यवहार में दाढ़ धातु के प्रयोग में चतुर्थी के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण दास्या संयच्छते कामुक, यहाँ दाह के लिए चतुर्थी विभक्ति थी पर वार्तिका के अनुसार अशिष्ट व्यवहार में दास्या में तृतीय विभक्ति हुई है। चतुर्थी विभक्ति पाला कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम, दान की कर्म द्वारा कर्ता जिसे चाहता है जिसको देता है या जिसको उद्देश्य बनाता है उसके संप्रदान संज्ञा होती है। दूसरा चतुर्थी संप्रदान, प्रस्तुत सूत्र के अनुसार संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण विप्राय गा ददाति। तीसरा क्रियया यम भी प्रेति सो अपि संप्रदानम, जब किसी क्रिया के द्वारा भी कर्ता को कुछ अभिप्रेत होता है तब भी उस पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण पश्येते अर्थात यहाँ शयन क्रिया शेते का अभिप्रेत पति है, अतः उसकी संप्रदान संज्ञा होकर पति चतुर्थी विभक्ति हुई है। चौथा, यजे कर्मणम प्रण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। यज धातु के प्रयोग में एक वाक्य में कर्म और संप्रदान दोनों कारकों का प्रयोग हो तो कर्म की करण संज्ञा अथवा संप्रदान की कर्म संज्ञा हो जाती है। उदाहरण, पशुना रुद्रम यजते। यहाँ यज धातु के कर्म पशु की करण संज्ञा तथा रुद्र की जो कि दा धातु के कर्म द्वारा अभिप्रेत पदार्थ है संप्रदान संज्ञा है, अतः कर्म की करण संज्ञा होकर तथा रुद्र की कर्म संज्ञा होकर दोनों में क्रमशः तृतीय अंत्य विभक्ति हुई है। पांचवा, रुच्यर्थानाम प्रियमाण, अर्थात रुच तथा इस अर्थ के धातुओं के योग में प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण, देवदत्ताय रोचते मोदकम। यहाँ रुच धातु के योग में प्रियमाण पदार्थ देवदत्त है, अतः उसकी प्रकृत सूत्र से संप्रदान संज्ञा होकर इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। श्लाघ हनु अंग अस्थपा शपाम गिप्यस्यमान श्लाघ प्रशंसा हनुंग छिपाना अष्ठा धारणा तथा शप उलाना देना क्रियाओं के योग में जहाँ अभिष्ट बदलाना वहाँ संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण, गोपी स्वराद कृष्णयाय श्लाघते हनुते तिष्ठते शापते वा। इन सभी में कृष्ण की बोधयति मुष्टि अर्थात गिप्स्यमान पदार्थ है, अतः उसकी संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति होगी। सातवां, धारुक्तमर्ण ऋजंत धारी धातु के योग में उत्तमर्ण अर्थात ऋण देने वाला संप्रदान संज्ञक होता है। उदाहरण, भक्ताय धारयति हरे मोक्षम। या ऋच प्रत्ययांत धृ के योग से उत्तर मर्ण भक्त की संप्रदान संज्ञा और उसमें चतुर्थी विभक्ति क्योंकि भगवान भक्त का भक्ति रूपी ऋण है। आठवां, स्प्रेहेर सिप्त स्प्रेह चाहना धातु के योग में ईप्सित पदार्थ संप्रदान संज्ञक है। उदाहरण, पुष्पेभ्य स्प्रेहति। नवा, क्रुध दुर्हेर्ष सूर्यार्थनाम यम प्रति कोप अर्थात क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रुधादि किए जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण, गुरु शिष्या क्रध्यंती। इस प्रकार यहाँ गुरु शिष्य पर क्रोधित हो रहे हैं, अतः यहाँ क्रोध आदि क्रियाओं के होने से चतुर्थी विभक्ति है। दसवां, क्रुद्ध द्रोह रूप शिष्टयो कर्म अर्थात उपसर्ग पूर्वक क्रुद्ध अथवा द्रोह धातुओं के प्रयोग में जिस पर कोप अधिक हो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण, कुरम अवि क्रुधयति। यहाँ उपसर्ग होने से प्रकृत सूत्र से क्रोध के विषय क्रूर की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय हुई है। ग्यारहवा, राधिक छो यर्ष विप्रश्न राधम तथा इच्छित धातुओं के योग से जिसके विषय में शुभाशुभ विषय विविध प्रश्न पूछे जाएं उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। राध तथा इच्छ के क्रमशः राधान तथा देखना अर्थ है। उदाहरण, कृष्णाय राध्यति इच्छते वा। यहाँ कृष्ण के विषय में प्रश्न किया गया था, अतः उसकी संप्रदान संज्ञा हुई और चतुर्थी विभक्ति हुई। बारहवा, प्रत्यांगम भवा श्रुव पुण्यस्य कर्ता। यहाँ अर्थात श्रुत धातु के पहले जब प्रति और आंग उपसर्ग लगे हों और इसका अर्थ प्रतिज्ञा करना हो तो प्रतिज्ञा करने की प्रेरणा देने वाला संप्रदान संज्ञक होता है। उदाहरण, विप्राय गा प्रति तिणोति आरणोति वा। तेरहवा, अनुप्रति ऋणश्च अनुदान प्रति उपसर्ग पूर्वक क्री शब्द करना धातु के युग में पड़े प्रवर्तन और व्यापार करने वाले संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण, होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति वा। पहले होता बोलता है तब अर्धवर्य उसको प्रोत्साहित करता है, यहाँ पूर्व व्यापार का कर्ता होता है, अतः उसकी संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी हुई है। चौदहवा, परिक्रमणे संप्रदान मन्यस्तस्याम परिक्रमण अर्थात नियत समय के लिए नौकरी स्वीकार में साधकतम कारक की विकल्प में संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण, शतेन शताय वा परिक्रीता वृत्त्य। यहाँ परिक्रयण का साधकतम कारक अर्थात करण शत है, अतः इसकी संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी विभक्ति है। पक्ष में कर्ण में तृतीय होगी। पंद्रहवा, तादर्थ चतुर्थी वाच्या तादर्थ अर्थात उसके लिए इस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तात्पर्य है कि जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य होता है उस प्रयोजन वाचक शब्द में वार्तिक सूत्र से चतुर्थी होती है। उदाहरण, मुक्तये हरि भजति। यहाँ मुक्ति प्रयोजन है अतः चतुर्थी विभक्ति हुई। सोलहवा, कलरपि संपद्यमाने च कलृप तथा तदर्थक धातुओं के प्रयोग में जो नहीं था उसके हो जाने पर जो संपद्यमान संभाव उस तृतीय विभक्ति होगी। उदाहरण भक्ति ज्ञानाय कल्पते, यहाँ ज्ञान संपद्यमान है अतः चतुर्थी हुई है। सत्रहवा उत्पातेन ज्ञापिते च, उत्पात का अर्थ है आकस्मिक भौतिक विहार जो अशुभ सूचक हो, इस उत्पात से सूचित अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण वाताय कपिला विद्युत, यहाँ बिजली से आंधे की अशुभ सूचना मिलती है अतः वाताय में चतुर्थी है। अठारहवा हित योगे च, वार्तिक के अनुसार हित के योग में जिसका हित हो चतुर्थी होती है। उदाहरण ब्राह्मणाय हितम, यहाँ हित योग के कारण ब्राह्मणाय में चतुर्थी हुई है। और इस क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिना, क्रियार्थक क्रिया उपपद हो किंतु तदवाचक तुमुल प्रत्यांत न हो तो इसके कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण नमस्कुर्म निसिंहाय, इस वाक्य में निसिंहाय में चतुर्थी विभक्ति है। बीसवा तमर्थाच भववचनात्, भववचनाच सूत्र से घंच प्रत्यय होता है, तदंत हंग प्रत्यांत शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण यागायति, यहाँ यज धातु में से भाव में यंज प्रत्यय होकर याग शब्द बनाया, यहाँ यंग प्रत्यय तुमुन प्रत्यय के अर्थ में आता है, इस कंत शब्द में चतुर्थी है। 21 नम स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वशंग योगांच, अर्थात नम स्वस्ति कल्याण स्वाहा स्वधा अलम तथा वशट के योग में चतुर्थी होती है। उदाहरण हरे नम प्रजाभ्याम स्वास्ति अग्नये स्वाहा पृथुभ्यम स्वाहा स्वधा, आदि में नम स्वस्ति स्वाहा स्वधा आदि के योग में चतुर्थी है। 22 मन्य कर्मणादरे विभाषा अप्राणिषु, अनादर या तिरस्कार प्रकट करने में मन धातु के कर्म में यदि वह प्राणी न हो तो विकल्प से चतुर्थी होती है। उदाहरण न त्वाम तृणम मन्ये तृणाय वा, यहाँ मन के योग में अनादर प्रकट करने में अप्राणी वाचक तृण शब्द में चतुर्थी है और पक्ष में मन धातु के कर्म में द्वितीया भी। 23 गत्यर्थ कर्मणे द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टाया मन ध्वनि, गत्यर्थक धातुओं के कर्म में द्वितीया या चतुर्थी विभक्ति होती है यदि वह कर्म मार्गवाचक न हो पर शारीरिक चेष्टा हो। उदाहरण ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति, यहाँ ग्राम मार्गवाचक भी नहीं है और गमन क्रिया में शारीरिक चेष्टा है अतः ग्राम शब्द में गम धातु के योग से द्वितीया व चतुर्थी होती है। पंचमी विभक्ति, पहला ध्रुव मपायो अपादानम, अपाय का अर्थ है विश्लेष अथवा अलग होना, किसी पदार्थ के अलग होने में जो कारण ध्रुव अवधि अर्थात सीमारूप में सीमारूप हो जिसकी अपादान संख्या होती है। दूसरा अपादाने पंचमी, अपादानम संज्ञा में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण सह ग्रामात आगच्छति, यहाँ कर्ता अवधिभूत कारक ग्राम से अलग हो रहा है अतः ग्राम में अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति होगी। तीसरा जुगुप्सा विराम प्रमादार्थ नाम उप संख्यानम, प्रस्तुत वार्तिक सूत्र में जुगुप्सा अर्थात घृणा विराम तथा प्रमाद अर्थ की क्रिया के योग में जिसके प्रति जुगुप्सा हो या जिससे दूर होने का अर्थ हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण पापात जुगुप्सते विरियति वा धर्मात प्रमाद्यति। चौथा पित्रार्थार्थनम भययेह, भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के योग में भय तथा रक्षा के हेतु की अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण सर्पात विभीति सर्पात्र त्रायते। पांचवा पराजेर शोणम परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का थकने या असहनीय होने पर जो असह्य होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण अध्ययनात् पराजयते, यहाँ पराजयते के योग में असह्य पदार्थ अध्ययन की अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति हुई है। छठा वर्णार्थानाम विपित्सह, वारण का अर्थ है निवारण करना रोकना, प्रवृत्ति का रोग प्रवृत्ति का रोग देना, वारण अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में इप्सित वस्तु की अर्थात जिससे हटाने की चाह हो अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण यविभ्यो गाम वार्यति क्षेत्र, यहाँ इप्सित पदार्थ यव है अतएव उसकी अपादान संज्ञा होकर वन पंचमी विभक्ति हुई है। अंतर्धौ ये नादर्शन मिच्छति, छिपाना अर्थ में जिससे कर्ता अपने आप को छिपाना चाहता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण महातु निलयते कृष्ण, दीवार आदि का व्यवधान करके माता से छिपना चाहता है अतः मातु की अपादान संज्ञा होगी। आख्यातोपयोगे उपयोग का अर्थ है नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना, अर्थात अतः नियम पूर्वक आख्या जिसमें विद्या ग्रहण की जाए गुरु या वक्ता में अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण उपाध्याय दाधीते, यहाँ उपाध्याय की अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति प्रयोग हुई है। नवा जनिक अर्थ प्रकृति, जनि अर्थात उत्पत्ति का जो प्रधान और आदि कारण होता है उसकी उपादान संज्ञा होती है। उदाहरण ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, यहाँ प्रजाओं की उत्पत्ति का हेतु ब्रह्म था उसकी उपादान संज्ञा होकर पंचमी हुई है। दसवा भू व प्रभव, भू का अर्थ है होना, प्रभव का अर्थ है प्रथम प्रकाश का स्थान। भू अर्थात भू के कर्ता का प्रथम उत्पत्ति या प्रकाश स्थान की उपादान संज्ञा होती है, अर्थात उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति का जो प्रथम स्थान है उसकी उपादान संज्ञा होती है। उदाहरण हिमालयात गंगा प्रभवती, यहाँ प्रकाश स्थान हिमालय की उपादान संज्ञा और उसमें पंचमी विभक्ति है। ल्यप्लोप कर्मण्य अधिकरणे च, वार्तिक सूत्रानुसार ल्यप प्रत्ययांत क्रिया का लोप होने पर उसके कर्मता आधार में पंचमी होती है। उदाहरण आसनात् प्रेक्षते, यहाँ उपविश्य इस ल्यवंत पद का प्रयोग तो नहीं है पर इसका भाव प्रकट होता है, अतः यहाँ उपविश्य के अधिकरण आसन में क्रमशः पंचमी विभक्ति हुई है। बारहवा यतश्चाध्वकाल निर्माणम तत्र पंचमी तद्युक्ता तद्ध्वना प्रथमा सप्तम्यो कालात् सप्तमी च वक्तव्या, अर्थात इन वार्तिक सूत्रों में प्रथम सूत्र के अनुसार जिस स्थान या समय से किसी दूसरे स्थान की दूरी या किसी दूसरे समय का अंतर बताया जाए उसे पंचमी होती है। द्वितीय सूत्रानुसार उस पंचम्यंत शब्द से युक्त दूर या मार्गवाचक शब्द से प्रथमा और सप्तमी विभक्ति होती है तथा तृतीय सूत्र के अनुसार इस पंचम्यंत कालवाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण वनात ग्रामे योजनम योजने वा, यहाँ वन शब्द से ग्रामे को दूरी बताई गई, अतः उसमें प्रथम सूत्र से स्थानवाचक होने के कारण पंचमी है। इस वनात पंचम्यंत से युक्त दूरी वाचक शब्द योजना अतः द्वितीय वार्तिक सूत्र से प्रथमा और सप्तमी विभक्ति है। अन्यारादित्यर्थे दिक् शब्दांचु तर पदा जाहियुक्ते, अर्थात अन्य आरात दूर या समीप इतर रिते बिना दिक् शब्द अच्छु धातु से बना हुआ जिसके उत्तर पद में हो उसे प्राक प्रत्यक आदि शब्द आच प्रत्ययांत दक्षिणा आदि शब्द तथा अहि प्रत्ययांत दक्षिणादि दक्षिणा ही आदि शब्दों के योग में पंचमी होती है। उदाहरण आरात वनात ऋते कृष्णात पूर्व ग्रामात। अप परिवर्जने, अर्थात जब अप और परि शब्द का अर्थवर्जन अर्थात दूर करना होता है तो ये क्रम प्रवचनीय होते हैं। आंग मर्यादा वचने, मर्यादा अर्थ में आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। प्राकृत सूत्र में मर्यादायाम न कहकर मर्यादा वचन कहा है, अतः वचन ग्रहण में मर्यादा के अतिरिक्त अभिविधि का भी ग्रहण है, अर्थात मर्यादा व अभिविधि अर्थ में आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। पंचम्य पांग परिभि, अप पांग परि इन कर्म प्रवचनीय संज्ञकों के योग में पंचमी होती है। उदाहरण अपहरे परिहरे संसार, यहाँ परि अपवर्जन अर्थ में आता अब परिवर्जन सूत्र से इसकी इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा और प्रकृत सूत्र से इनकी योग में हरे में पंचमी हुई है। प्रति प्रतिनिधि प्रतिदान यो, जो प्रति का प्रयोग प्रतिनिधि एवं प्रतिदान के अर्थ में हो तो प्रति कर्म प्रवचनीय होता है। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात, यस्मात अर्थात कर्म प्रवचनीय के योग में जिसकी ओर से कोई प्रतिनिधि हो अथवा जिससे किसी वस्तु का प्रतिदान हो अर्थात वस्तु बदली जाए उसमें कर्म प्रवचनीय संज्ञक प्रति के योग में पंचमी होती है। उदाहरण तिलिव्यम प्रति यच्छति माशान, यहाँ प्रति दानार्थक प्रति की पूर्ववत कर्म प्रवचनीय संज्ञा और प्रतिदान से तिलिव्य में प्रकृत सूत्रानुसार पंचमी हुई है। अकर्त ऋणे पंचमी, कर्ता से रहित जो ऋण या हेतु हो वहाँ पंचमी होती है। उदाहरण शतात बद्ध, यहाँ शत शब्द ऋण बंधन का हेतु है अतः प्रकट सूत्र में इसमें पंचमी है। विभाषा गुणे स्त्रियाम, अस्त्रीलिंग शब्द जो हेतु का गुण हो उसमें विकल्प से पंचमी होती है। उदाहरण जांगयात जाड्येन वा बद्ध, यहाँ जाड्य शब्द अस्त्रीलिंग गुणवाचक हेतु अतः पंचमी हुई। पृथ्वीज्ञना पृथ्वीज्ञनाना अभिस्तृतिया अन्यस्तरिया स्याम, पृथक बिना और नानक योग से द्वितीया तृतीया पंचमी होती है। उदाहरण पृथकम रामेण रामात रामम वा। कर्णेव स्तो कल्प कृच्छ्र कतिपयस्यास सत्वच वचनस्य। द्रव्य से विभिन्न अर्थ में प्रयुक्त स्तोक कम अल्प कृच्छ दुख तथा कतिपय शब्दों से करण अर्थ में तृतीया पंचमी विकल्प से होती है। उदाहरण स्तोकेन स्तोकात् वा मुक्त दुरांति कार्थिव्यो तृतीया च। दूततांतिक अर्थ वाले शब्दों में पंचमी तृतीया द्वितीया होती है। उदाहरण ग्रामस्य दूरम दुरात दुरेण वा।